ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। विद्यार्थियों का कोरोना परीक्षण कर परीक्षा में सहभागी कराने के अपने निर्णय का क्रियान्वयन न करने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने किया निजी मेडिकल कॉलेजों से आग्रह। आज 1573 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि, वहीं 885 लोग हुए वायरस के संक्रमण से मुक्त। मर्यादित और सुरक्षित रोजगारी की गारंटी न होने तक नेपालियों को घरेलू कामगार के रूप में खाड़ी देश न भेजने का संसदीय समिति का निष्कर्ष। और अब तक विश्वभर 2,45,04,000 से अधिक लोग हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने निजी मेडिकल कॉलेजों से विद्यार्थियों का कोरोना परीक्षण कर परीक्षा में सहभागी कराने के अपने निर्णय का क्रियान्वयन न करने का आग्रह किया है। मंत्रालय की आज की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने ऐसा आग्रह किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल कराने के लिए ही बिना लक्षण वाले विद्यार्थियों का पीसीआर टेस्ट न कराया जाए। इस तरह की पुष्टि में उन्होंने कहा कि पीसीआर टेस्ट के लिए निर्धारित मापदंड से अगर बाहर जाकर टेस्ट किया जाने लगा तो स्रोत का अनावश्यक खर्च होगा और इससे कोरोना के खिलाफ संघर्ष में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आज 1573 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें विभिन्न 48 जिलों के 1049 पुरुष और 524 महिलाएं शामिल है। गौरतलब है कि कोरोना के नए संक्रमितों में 809 लोग काठमांडू घाटी के ही हैं। इसे मिलाकर देश भर में कोरोना से अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या 73,394 हो गई है। हालांकि आज 885 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं और इसके साथ ही देशभर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या 53,898 हो चुकी है। बहरहाल विभिन्न 72 जिलों को मिलाकर देशभर में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 19,019 है। वहीं आज एक महिला और 9 पुरुष समेत 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आज मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने ये जानकारियां साझा की। सांसदों ने कहा कि खाड़ी देशों में घरेलू कामगारों के लिए जब तक मर्यादित और सुरक्षित रोजगारी की गारंटी नहीं हो जाती तब तक वहां नेपालियों को घरेलू कामगार के रूप में नहीं भेजा जाना चाहिए। प्रतिनिधि सभा उद्योग तथा वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति की आज की बैठक में समिति के सदस्य सांसदों ने ये बात कही। सिंहदरबार में हुई समिति की बैठक के दौरान इस बात के जिक्र के साथ कि खाड़ी देशों में घरेलू कामगारों के साथ हिंसा की घटनाएं अधिक होती है, सदस्यों ने इस विषय में मंत्रालय का ध्यानाकर्षण कराने का निर्णय भी किया। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार नेमवांग ने कहा कि सरकार तकनीकी शिक्षा को उच्च प्राथमिकता में रखकर पूर्वाधार निर्माण कर रही है। पांचथर जिले की फिदिम में आज फिदिम माध्यमिक विद्यालय में सूचना संचार प्रविधि प्रयोगशाला आईसीटी लैब का उद्घाटन करते हुए मंत्री नेमवांग ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आधुनिक और तकनीकी शिक्षा से देश की समृद्धि में मदद मिलेगी। कोरोना कहर के साथ ही बंद रहे पर्यटन व्यवसाय को चलायमान बनाने के लिए चितवन के व्यवसायियों ने विभिन्न सेवाओं में छूट देने की घोषणा की है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज सौराहा में आयोजित कार्यक्रम में वहां के पर्यटन व्यवसायियों ने विभिन्न सेवाओं में पर्यटकों को 20-30% तक की छूट देने की घोषणा की है। बारा के पथलया में बस ने एक स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। आज शाम को निजगढ़ से पथलया की तरफ जा रही स्कूटी को विपरीत दिशा से आती हुई बस ने टक्कर दी थी। इस हादसे में स्कूटी चालक निजगढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 10 के 26 वर्षीय तीर्थमान स्यांग तांग, उनकी पत्नी 23 वर्षीय ज्योति और 1 वर्षीय बेटे की हुई मौत की जानकारी हमारे संवाददाता रंजन यादव ने दी। जुमला के जिला मुख्यालय खलंगा बाजार से मोगू की राराताल तक सड़क बनने के बाद पर्यटकों को यात्रा करने में सहज हुई है। इससे पहले नगम सीजा क्षेत्र होते हुए पर्यटक राराताल विजिट करने जाया करते थे, लेकिन जब से खलंगा बाजार से मोगू तक सड़क निर्माण किया गया है तब से आंतरिक और बाह्य पर्यटकों को राराताल तक पहुंचने में आसानी हो रही है। मकवानपुर में आज नदी में बहने से दो लोगों की मौत हो गई है। मकवानपुर गढ़ी गांव पालिका क्षेत्र से वार्ड नंबर 3 की ओर जाने के दौरान नदी में बहने से ज्ञान बहादुर परियार और उनकी पत्नी तुलसा की मौत होने की जानकारी इलाका पुलिस कार्यालय मकवानपुर गढ़ी ने दी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। अब वक्त है एक छोटे से व्यावसायिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ
1498 फोन गर्नुस्।
समस्या पोस्ट पेनमा नि आयो
1498 फोन गर्नुस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेड को पुक नम्बर पनि चाहिए थियो,
त्यसको लागि पनि 1498 फोन गर्नुस्।
नेपाल टेलिकम को जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन मा कुनै पनि समस्या आएमा जे जे सोध्न मन छ 1498 मा फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बर मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। रेडियो नेपाल की अंग्रेजी समाचार सुधार व शैली निर्धारण संबंधी 6 दिनों की कार्यशाला आज से रेडियो नेपाल सिंह दरबार काठमांडू में शुरू हुई है। कार्यशाला का संबोधन करते हुए रेडियो नेपाल के संचालक समिति के अध्यक्ष एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के सचिव हरि प्रसाद बस्याल ने विश्वास जताते हुए कहा कि इस कार्यशाला से रेडियो नेपाल की अंग्रेजी समाचार का गुणस्तर और अधिक बढ़ेगा। रेडियो नेपाल के कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसी ने कहा कि अंग्रेजी समाचार का स्तर और लोकप्रियता को कायम रखने के लिए कार्यशाला महत्वपूर्ण साबित होगा। जुमला के जिला मुख्यालय खलंगा विमानस्थल विस्तार के लिए अध्ययन करने की तैयारी की गई है। धावन मार्ग विस्तार के लिए चालू आर्थिक वर्ष में 1 करोड़ का बजट विनियोजन किया गया है। ये जानकारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालय जुमला के प्रमुख महेन्द्र बहादुर सिंह ने दी। बागलुंग की बागलुंग नगरपालिका 8 में रहे स्वास्थ्य चौकी भवन भूस्खलन के जोखिम में है। स्वास्थ्य चौकी भवन के नीचे भूस्खलन आने के बाद स्वास्थ्य चौकी भवन भूस्खलन के उच्च जोखिम में होने की जानकारी स्वास्थ्य चौकी के इंचार्ज विष्णु प्रसाद शर्मा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,31,77,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,45,04,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 10,00,000 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। अमेरिका में 72,94,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 2,09,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में कोरोना से 60,41,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 94,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 47,18,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,41,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रूस में 11,51,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 20,000 से अधिक लोगों की जानी जा चुकी हैं। कोलंबिया में 8,07,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 25,000 से अधिक की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विद्यार्थियों का कोरोना परीक्षण कर परीक्षा में सहभागी कराने के अपने निर्णय का क्रियान्वयन न करने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने किया निजी मेडिकल कॉलेजों से आग्रह। आज 1,573 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि, वहीं 885 लोग हुए वायरस के संक्रमण से मुक्त। मर्यादित और सुरक्षित रोजगारी की गारंटी न होने तक नेपालियों को घरेलू कामगार के रूप में खाड़ी देश न भेजने का संसदीय समिति का निष्कर्ष। और अब तक विश्वभर 2,45,04,000 से अधिक लोग हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।